హరే కృష్ణ. తోపై శ్రీ భక్తంగా హార్దిక స్వాగతే. శ్రీ చైతన్ బాబుకి చరణమే కృపాకి భిక్షా కర్తా హూ. పూజితనా సినే డివోటి పూరే మహారాష్ట్ర ఘుమ ఘుమ కే సబ్కో భక్తి శాస్త్ర మే గ్రాజ్యుయేట్ కర్ రే ప్రభుజీ. తో పూజీ ఆశీర్వాద సే అపేక్షా కర్తా హూ. తో బహుత్ సుందర ప్రసంగ హమ్ లోగ్ కుచ్ దిన్ సే పడ్తే ఆ రే. तो ये जो आज का श्लोक है, इस श्लोक में प्रभुपाद सुंदर शिक्षाएं देते हैं. समय के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे. पहले अलग अलग आचार्यों का टिप्पणी के आधार पर इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे. उसके उपरांत कुछ चैतन्य चरितामृत, समय हुआ तो भगवान कृष्ण के जो प्रभुपाद लिखते हैं वो कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड, उनमें से कुछ, और उस समय मिला तो जगन्नाथ जी का कुछ कथाएं करेंगे. तो हम देखते हैं जब भगवान वामन देव प्रकट होते हैं तो सारे देवी देवता जो चाणर विद्याधर गंधर्व के निवासी सब अपना अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए. सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इतना पुष्प वृष्टि कर रहे थे जो कश्यप मुनि और आदित्य का घर ढक गया था पुष्पों से. फिर इसके उपरांत स्वयं सूर्यदेव गायत्री मंत्र जप करके बृहस्पति के द्वारा और ब्राह्मणी काल थ्रेड देते हैं वामन देव भगवान को. और उसके पश्चात पृथ्वी माता मुर्गो चर्म देते हैं वामन देव को. फिर माता आदित्य कोपिन देते हैं भगवान वामन देव को. बाद में इंद्र छता देते हैं भगवान वामन देव को. बाद में ब्रह्मा जी कमंडल देते हैं. फिर सरस्वती देवी रुद्राक्ष माला जप करने के लिए देते हैं भगवान वामन देव को. उसके उपरांत कुबेर जो कि भिक्षा पात्र देते हैं भगवान वामन देव को. फिर जब भगवान वामन देव को समझ में आता है बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पे विश्वजीत यज्ञ कर रहे, तो जब वो भीख मांगने के लिए आ रहे थे उस समय देखिये वेदांत दशी का कमेंट्री कितना सुंदर भाव प्रकट करते उधर श्लोक के ऊपर. बोलते जब वामन देव आ रहे थे तभी सोचे आ रहे मैं तो बलि महाराज के पास भिक्षा की याचना करने के लिए जा रहा हूं, पर मेरे छाती में कौन है, श्रीवस्त चिन्ह है, मीन्स लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है. तो मैं कोई व्यक्ति को भीख मांगने पहले अगर लक्ष्मी देवी का दृष्टिक्षेप उसके ऊपर हो गया तो क्या करेगा, धन संपत्त में भरभराट हो जाएगा, तो उसके मैं भिक्षा नहीं ले सकता. इसलिए वामन देव क्या करते हैं, अपने जो उत्तरी है उसको उल्टा ढक लेते हैं. जनरली आप देखेंगे पुजारी जब आरती करते हैं उत्तरी ऐसे रखते हैं जो उनका ए हैंड फ्री रहता है, पर वामन देव क्या करते हैं अपना उत्तरी उल्टा ढक लेते हैं ताकि लक्ष्मी देवी को समझ में आए मैं क्या कार्य करने जा रहा हूं. ये वेदांत दशी का कमेंट्री. तो इस समय लक्ष्मी देवी सोचते कि अरे प्रभु आजकल उल्टा कार्य कर रहे, क्या बात है, कुछ तो कारण रहेगा. इसलिए लक्ष्मी देवी और अलर्ट हो जाते हैं. फिर जब वामन देव जाते हैं बलि महाराज के पास और बलि महाराज को जब मांगते हैं उस समय देखिए बलि महाराज की जो मेडिटेशन का तरीका कौन सा दर्जे का था. तो बलि महाराज को जब भगवान वामन देव तीन पग जमीन मांगते हैं, दो पग तो दे लिए, दो ब्रह्मांड हो गया, तीसरा पग के समय बलि महाराज क्या करते हैं प्रहलाद महाराज को मेडिटेशन करते हैं. उनकी जो ग्रैंड फादर बलि महाराज के पिताजी विरोचन, उनके पिताजी कौन थे, प्रहलाद महाराज. तो प्रहलाद महाराज की हर क्रियाओं के ऊपर मेडिटेशन करते, ये वेदांत दशी का कमेंट्री का मैं बता रहा हूं. प्रहलाद महाराज सोचते हैं मेरे ग्रैंडफादर के जीवन में जो समस्याएं आ रहा था वो क्या कर रहे थे, जब हाथी हिरण्यकश्यप ने उनको हाथी के ऊपर फेंक दिया तो इस समय प्रहलाद ने क्या किया, भगवान विष्णु को स्मरण किए और हाथी ने क्या किया अपने सुंड प्रहलाद के सर के ऊपर रख लिए. फिर जब हिरण्यकश्यप ने जहरीले सांपों की ओर फेंक दिया प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने क्या किया उनकी मीन्स वो याद के जो मेरे माँ कौन है, लक्ष्मी देवी मेरे बोलना, और समुद्र से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है और जहर ही प्रकट हुए, मीन्स जहर क्या है, मेरा मामा है मेरे बोलना. तो लक्ष्मी देवी ऐसा प्रहलाद महाराज सोचे कि अरे मेरे मामा तब पैजन है, जहर है मेरे मामा है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता, इसलिए क्या करता अपने मामा को याद कर रहे थे. इसलिए जहर ने क्या किया प्रहलाद महाराज को कुछ भी तकलीफ नहीं दे पाया. फिर जब जहरीले सांप की ओर फेंक दिए तभी वो क्या के भगवान अनंत शेष का बेड कौन है, वासुकी नाग बराबर ना. तो क्या किया, भगवान की बेड़ को याद किया प्रहलाद महाराज। तो बलि महाराज इधर सोच रहे, मेरे जो ग्रैंड फादर के जीवन में इतने सारे समस्या आया, फिर भी उसको क्या किया, वो पॉजिटिव ले लिए और भगवान के ऊपर फुली डिपेंडेंट थे, तो मेरे ये सारे ऑब्स्टेकल ये समस्याएं क्या बिगाड़ सकता। तो उनका जो उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात शतवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, उनका जो उत्साह था, निश्चय तथा धैर्य था, उस समय क्या किए, वो भक्ति मीन्स उसी कार्य को रिपीटेडली करते गए बाद में उनकी भक्ति में वो प्रगत कर, भक्ति का उच्च स्तर को प्राप्त कर लिए। क्योंकि वो क्या किए, दैवीम ये महात्मनम स्तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रित भजनते अनन्य मनुष्यो, वो अनन्य मनुष्य भगवान की भजन किए, इसलिए कि यशस्वी भक्त बने, एक सक्सेसफुल डिवोटी बने। या आचार्य बोलते हैं कि क्योंकि वो लादेनी शक्ति के आश्रम में हमेशा रह रहे थे, कौन, बलि महाराज, इसलिए एक यशस्वी पर्सनालिटी बने। तो बलि महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं, ये जो हम लोग एक न्यू फायर डिवोटी साधक का शुरुआत होता है, भक्ति का शुरुआत होता है श्रद्धा से। श्रद्धा शब्द में दो शब्द है, जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, श्र और धा। धा मीन्स धारण करना, स मीन्स सत्य चीजें को, जो सत्य चीजें को अपने जीवन में धारण करता है वो व्यक्ति हमेशा श्रद्धालु होते हैं, ना कि असत्य चीजों को हम लोग धारण करके बैठेंगे। और इसका अपोजिट असुर होते, असुर का भी दो शब्द है, जीव गोस्वामी बोलते हैं, र मीन्स रममाण करना, ट्रैवलिंग करना, मोमेंट करना, किनमें अश अशुर अश र, तो अश यानी कि आशु शब्द से अश आता है, तो आशु यानी कि इमीडिएट। तो जिनको इमीडिएट प्लेजर चाहिए, इमीडिएट मीन्स जो इमीडिएटली जो उनको जल्दी जल्दी इंद्र तृप्ति चाहिए, वो असुर होते हैं। तो इसलिए इधर देखा जाए तो इंद्र ने भले ही स्वर्ग प्राप्त किया, पर वो एंजॉयमेंट में, भागवत में बताया गया है कि न यत्र वैकुंठ नहीं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधव भागवत दाश्रय और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यते किम दुष्कर न कृतिभिर तपवृतेर दाने न फलगुना न यत्र नारायण पाद पंकज अतिशय इंद्र उत्सव फिफ्तिकन में वर्णाता है। तो इंद्र तृप्ति के कारण व्यक्ति क्या कर सकता है, आंतरिक जो अंदर हो सुख नहीं ढूंढ सकता, बाहर ही सुख ढूंढेगा। इसीलिए तो हम इसी श्लोक का 10-12 श्लोक पीछे देखेंगे, सर लास्ट चैप्टर में हमने देखा, जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध के बाद हिरण्यकश्यप क्या करे, भगवान को ढूंढ रहे कहाँ गए। तभी भगवान हिरण्यकश्यप ने, भगवान विष्णु ने क्या किए, हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर प्रवेश कर लिए। जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं, सुख बाहर ढूंढते हैं, और जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते और सुख अंदर ढूंढते हैं। इसलिए सारे आध्यात्मिक क्रियाकलाप में आप दिखेंगे, आपको रिपीटेडली ये बताया जाएगा, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर ही है, हमें अपना चश्मा चेंज करना है बाहर ढूंढने का। एक अच्छा बोध था इसमें से। श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक के ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं और बोल रहे कि विभेति, एक्चुअली आचार्य लोग जो भागवत पढ़ते थे ना, ये शब्द ब्रह्म है ना, हर श्लोक के वो कनेक्टेड जाते थे, पर मुझे हरिद्वार महाराज का थोड़ा एसोसिएशन मुझे मिला तो महाराज ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए, उनके आधार पर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो चक्रोत्पाद बोलते हैं कि विभेति, वो बोलते हैं कि बलि महाराज डर रहे थे, किसके लिए डर रहे थे, नहीं, चक्रोत्पाद बोलते हैं कि बलि महाराज डर रहे थे, किसके लिए डर रहे थे, विभेति, ये देखिए असाधु बादम नीचे का ये में, वो बोलते कि मैं इसीलिए डर नहीं रहा हूं कि मुझे वरुण फांस ने बांध लिया है, नरक में जाके सफरिंग होना पड़ेगा, नहीं, बलि महाराज इसलिए डर रहे कि असाधु बाद मेरे से, मैं जो वचन दिया है, क्या वचन दिया था, जो बटो ब्राह्मण आए थे आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, तो मेरा वचन से मैं टले हिलेगा नहीं, मेरे वचन में मैं अडिग रहेगा। बलि महाराज इसलिए डर रहे थे, मैं वचन दे के उनको जो प्रमिस करके वो फुलफिल नहीं कर पाएगा शायद, इसलिए डरते थे। तो चक्रपाद बोलते हैं कि जो भक्त होते वो क्या करते हैं, वचनबद्ध होते हैं, ऐसा नहीं कि वचन दे दिया बाद में सरी सरी बोलना, नहीं, एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। तो चक्रोत्पाद बोलते हैं बलि महाराज इसलिए डर रहे थे, विभेति शब्द आता है शुरुआत से, उसका वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं कि डरना। तो चक्रोत्पाद बोलते हैं कि ये बलि महाराज इसलिए डर रहे थे, एक ब्राह्मण को वचन दिए और पूरी नहीं कर पाए, इसलिए मीन्स पूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए वो डर रहे थे, पर वो पूरी कर ले इसलिए वो डरे नहीं। तो इनमें से प्रभुपाद हमें शिक्षा देते हैं जो वैष्णव होते हैं भक्त होते हैं, इंटरेस्टिंग लिख रहे प्रभुपाद जी के, वो बोलते हैं कि अतः भगवान ने उन्हें बदनामी रोकने की अच्छी तरह सलाह दी कि वे अपना सिर अर्पित कर दे। वैष्णव कभी किस दंड से नहीं डरता है, वो किसके लिए डरते हैं, वैष्णव किसके लिए डरते हैं, वो बोलते कि अपने यश के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरतापूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। जो बलि महाराज थे बदनामी से बचने के लिए डरते थे। तो शास्त्र में रिपीटेडली हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है ऐसा बदनामी कई प्रकार की होता है, मीन्स रिपीटेडली हमें सुनने को मिलता है, जो कैसे जो चैतन्य महाप्रभु जब राजा प्रताप रुद्र सिंह को मिलने के लिए सारे भक्त बोलते हैं तभी महाप्रभु डरते हैं, महाप्रभु अपने बदनामी से मीन्स बचने के लिए मना करते हैं। वो स्टोरी में डिटेल से जाता हूँ, आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु जब मकर संक्रांति के दिन संन्यास लेते हैं, उसके बाद जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी में जब सर्वम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं, बाद में दोल पूर्णिमा देखते हैं, फिर सारे वैष्णव के हृदय में उस इलाके में जितने सारे लोग थे उड़ीसा प्रांत में सबके हृदय में चैतन्य महाप्रभु निवास करते। क्यों? क्योंकि जो उड़ीसा का राजा थे कौन, प्रताप रुद्र सिंह, उनको उनका गुरु थे सर्वम भट्टाचार्य और उनको एक सन्यासी ने हरा लिया और वह सन्यासी कौन थे, श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए सारे उत्कल प्रांत में चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध थे और सबके हृदय में था इच्छा था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु एक बार दर्शन लेना है, उनका संग प्राप्त करना है, और ऐसे उनकी ख्याति पूरा फैल गया था। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भाई को ढूंढने के लिए विश्वरूप को दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं और कंटिन्यूअसली जब उधर जाते हैं, एक मेरा जो होम टाउन है बरहमपुर, उसके पास में के गाँव है नीमपड़ा करके, नीमखंडी, और नीमखंडी यानी कि तीन आम का वृक्ष है, उधर महाप्रभु ने 4 घंटा के लिए रेस्ट किए थे, थक गए थे कीर्तन करते करते। फिर उसके आगे आते हैं श्रीकाकुलम, अगर आप हम भागवत में पढ़ते हैं कुर्म क्षेत्र, जो भगवान कुर्म के अवतार, फिर आगे जाते हैं विशाखापट्टनम, फिर बाद में कुहर में रामानंद राय का उद्धार करते हैं, फिर बाद में अहोविलम वगैरह होके तिरुपति जाते हैं, फिर उसके बाद जो भयंकर भट्टी के उधर 4 महीना रहते हैं, ऐसे 1 साल पूरा हो जाता है महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा। फिर जब 1 साल यात्रा के उपरांत जब जगन्नाथपुरी को वापस आते हैं तो पुरी नहीं आते, वो अलारनाथ में आते हैं और अलारनाथ में रहते हुए उनका जो असिस्टेंट थे सेवक कौन, काला कृष्णदास, उसको भेजते आप क्या करो जाके जगन्नाथपुरी में ये समाचार दो, मैं मेरे दक्षिण भारत यात्रा पूरी करके आ गया है। तो सारे वैष्णव खुश हो जाते हैं। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ से जगन्नाथ मंदिर आते हैं, भगवान की आरती दर्शन लेते हैं, बाद में उधर का पुजारी महाप्रभु को कुछ महाप्रसाद कुछ गार्लैंड देते हैं, फिर सार्वम भट्टाचार्य घर पे आके चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके उपरांत सार्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु बहुत दिन से मेरा एक सवाल आपसे बोलना है पर डरता हूँ मैं, बोलूँ क्या नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि डरने का कुछ कारण नहीं है, आप बोलिए, अगर योग्य रहा तो मैं उसके हिसाब से आपको उत्तर देगा या आचरण करेगा, नहीं तो उसको मैं ठुकरा देगा। तो उस समय सार्वम भट्टाचार्य बोलते हैं कि बहुत दिन से जो उत्कल प्रांत का राजा है उनका इच्छा है आपसे मिले, आपसे आपका कोई सेवा करे। तब ध्यान में रखिए आप लोग, हम लोग चर्चा करें अपकीर्ति के बारे में, एक सन्यासी होने के बाद चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के नाते वो कैसे अपना अपकीर्ति से डरते थे, ये हमारे टॉपिक है, इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो महाप्रभु एक प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माँ बोलते कि राजा र मिलने भिक्षु कर दुई नाश परलोके रहु लोके कोरे उपहास। बोलते कि राजा र मिलने भिक्षु कर दुई लोक नाश। चित्र माँ बोलते हैं मैं एक भिक्षुक सन्यासी हूँ और मैं अगर एक विषय राजा है उनको मिलेगा तो मेरा दुई लोक नाश। दुई लोक कौन सा, यह लोक परलोक। अभी मैं जो जीवन जी रहा हूँ उस समय लोग मुझे निंदा करेंगे, मेरा मृत्यु के पश्चात भी लोग मेरा अवहेलना करेंगे, मुझे निंदा करेंगे। इसलिए राजा रा मिलने भिक्षु कर दुई लोक नाश, यह लोक रहो सॉरी परलोक रहो यह लोक के उपहास, लोग मुझे हंसी मजाक लेंगे, ठट्टा में लेंगे। तो जब इस प्रकार ये बोलते हैं तो उस समय सारे भक्त डर जाते, कोई आगे नहीं बढ़ते, कोई कुछ बोलने के लिए किसी का भी साहस नहीं होता है। और उधर रिपीटेडली जो उड़ीसा प्रांत का राजा थे वो बार बार शरण भट्टाचार्य को, बाकी वैष्णवों को बोलते थे कुछ मेरे बारे में, महाप्रभु को पूछा कि आपने, उस समय सारे भक्त बोलते कि हाँ महाप्रभु मुझसे भगवान की जो कृपा हमेशा लेट होता है पर होता ही है, तो आप चिंता मत करो। फिर उसी समय कहा जाता है, देखिए राजा का भाव क्या था, यदि मोरे कृपा नो को रिवे गौर हरि, राज्य छाड़ी योगी होइबा इहा भी कारी। वो बोलते कि अगर इफ गौरहरी लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु विल नॉट शो मच टू मी, आई शैल गिव अप माई किंगडम, बिकम ए मैंडिकेंट एंड बेग फ्रॉम डोर टू डोर। वो बोलते कि अगर महाप्रभु कृपा नहीं किए ना भिखारी बन के मीन्स राज्य गांव से घर घूमेगा। तो कहते हैं ये समाचार जब सुनते हैं सारे भक्त और खुशी दुखी हो जाते हैं, बोलते कि बाप रे, ये राजा का चैतन्य महाप्रभु के चरण में जितना प्रीति है उतना हमारे नहीं है। तो सब भक्त दुखी होते हैं और हर भक्त अपना प्रयास कर रहे थे। फिर सारे भक्त मिलकर नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और नित्यानंद प्रभु वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को पहले राजा का बहुत गुणगान करते हैं, बोलते कि इतना उनका जो आपके चरण में इतना प्रीति है वो हम लोग का नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति होना ना, तो पहले वैष्णव को संतुष्ट करना पड़ेगा, और भक्त अगर हमारे लिए प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकता है। फिर सारे भक्त क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और उस समय
तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदे रो पास मागिया लैला प्रभु एको बहिर्वास।
नित्यानंद प्रभु बोले कि ऑलरेडी मैं भी बहुत प्रयास किया था फिर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा देने के लिए तैयार नहीं, पर महाप्रभु ने बोले है वो क्या करेंगे, उनका एक उत्तरी वो दे देंगे जो कि आप क्या कीजिए लेके चैतन्य महाप्रभु श्री राजा को दीजिए। तो कहा जाता है उस समय वो जो ये भगवान का तदीय होता है तो चैतन्य महाप्रभु का उत्तरी लेके राजा को देते हैं, और राजा प्रताप रुद्र सिंह उसको क्या करते हैं, महाप्रभु के अभिन्न अंग समझ के सेवा करता रहता है। फिर जब बार बार भक्त रिक्वेस्ट करते हैं तभी तो महाप्रभु बोलते कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं, मेरे साधना में आप लोग डिस्टर्ब मत करो। फिर जब रथ यात्रा के समय आता है उधर से शिवानंद सेन सारे वैष्णव को लेकर जगन्नाथपुरी आते हैं, और उस समय डिटेल से हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, सारे वैष्णव का नाम बोलते हैं, ये श्रीखंड की निवासी है, ये शांतिपुर की निवासी है, ये कौन सा जो कुमारहट की निवासी, इसे अलग अलग नदिया की निवासी, अलग अलग वैष्णव का बारे में महाप्रभु को सर्वभूम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र सिंह को बताते हैं। तो बाद में एक प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, वो बोलते हैं कि येते को देखो जेते जन चैतन्य र गण सब चैतन्य जीवन। वो बोलते हैं कि आप देख रहे हो ना जो चैतन्य महाप्रभु सारे एसोसिएट बंगाल से आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या करे उन सारे भक्तों को फूल माला पहना रहे और चंदन का लेप लगा रहे सबकी मस्तक के ऊपर। और इस समय ये सारे दृश्य कौन देख रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य श्री राजा प्रताप रुद्र सिंह का टेरिस के ऊपर से स्वयं राजा प्रताप रुद्र सिंह और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों देख रहे थे। फिर जब दिखते हैं कि भगवान तब संतुष्ट होते जब भक्तों की सेवा करते हैं, तो बाद में गुंडीचा महाजन लीला देखते हैं काशेश्वर मिश्र घर पे, घर से जो महाप्रभु आदेश देते हैं हम लोग को कल गुंडीचा महाजन करना है, तो सारे भक्त तैयार करते हैं। उसमें राजा बोलते हैं कि महाप्रभु आने का जरूरत नहीं, हम लोग सब करेंगे। फिर बाद में प्रसिद्ध श्लोक है, बोलते कि उत्तम हो या राजा करे तुच्छ सेवन अतएव महाप्रभु फिरी गला मन। तो बोलते कि जब देखते कि राजा इतना उच्च पद में होने के बाद भी वो खुद निज कार्य कर रहा है, झाड़ू मारना, क्लीनिंग करना, और रथ यात्रा के समय भी स्वयं झाड़ू लेके ये जो साफ करते उसको प्रथम मार्जन बोलते हैं। तो इस समय महाप्रभु क्या करते, कृपा देते हैं, नहीं तो उसके पहले नहीं। तो इनमें से हम लोग ये दिखाए कि जो सन्यासी होते हैं, जो प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सन्यासी अपना अपकृति से डरते हैं, जो समाज में बड़े व्यक्ति होते हैं अपकृति से डरते हैं। ऐसे जैसे बलि महाराज ने क्या किया, अपने अपकृति होने के लिए अपकृति से डरे और जो चाहे सब कुछ दे दिए भगवान वामन देव को। और एक सुंदर स्टोरी आता है श्रीमद् कृष्ण बुक में, शिला प्रपा लिखते हैं जो श्यामंतक मणि के बारे में, थोड़ा मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो कृष्ण बुक में प्रपा डिटेल्स वर्णन करते हैं, जो एक राजा था उनका नाम था शत्रजीत, और शत्रजीत वो भगवान सूर्यदेव का एक महान भक्त थे। भगवान सूर्यदेव का उपासना करके एक मणि प्राप्त किए थे, उनका नाम था श्यामंतक मणि। और इस श्यामंतक मणि में एक खासियत था, उसमें डेली 170 पाउंड सोना उत्पन्न कर सकते थे। और जिसके पास वो मणि है उस इलाका में कभी भी हरिकेन या जो पेस्टिलेंस, उसको क्या बोलेंगे, जो अकाल रोग या तूफान, ये सब कुछ नहीं आता था, कोई भी लोग उधर दुखी नहीं रहते थे। तो ये जो शत्रुजीत क्या कर रहे थे, वो मणि का लकेट करके, लकेट पहन के वो हर इलाके में घूमते थे। ऐसे घूमते घूमते द्वारिका प्रांत को आते हैं। जब द्वारिका को आते हैं तो द्वारिका के निवासी को लगता है कि अरे स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण द्वारिका देश हमारे साथ निवास कर रहे, इसलिए सारे देवी देवता द्वारिका को भ्रमण करने के लिए आ रहे। तो उन द्वारिकावासियों को लगा कि शायद सूर्यदेव ही हमारे इलाका में भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। और उसी समय जब इस प्रकार की दिख के उस भगवान कृष्ण को जाकर समाचार दिए, तो भगवान कृष्ण ने स्माइल दिए, वो बोले कि एक्चुअली एक तो भक्त होते मेरे पास आते हैं, दूसरे कुछ जो अहंकारी व्यक्ति होते, एरोगेंस व्यक्ति होते, वो अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए आते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जाके स्माइल दिए, कुछ बोले नहीं। उसके बाद वो जो राजा छत्रजीत क्या किए, वो हार पहन के आए थे और पास में एक मंदिर था उधर क्या के रखे। फिर जब जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने, भक्त वत्सल होते हैं और सारे नियमों को पालन करने के लिए भगवान एक्सपर्ट होते हैं, तो भगवान बोले इस दुनिया में जो भी अच्छे चीजें हैं वो केवल एक राजा के पास होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फिलो सिद्धांत इसके पीछे छिपा हुआ है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका गलत यूटिलाइज करेंगे समाज में, हमारे खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हम लोग अपना ही मीन्स कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले कि आप क्या करो, ये जो श्यामंतक मणि है आप क्या करो, उग्रसेन महाराज को दे दो। ये देखिए भगवान की भगवता, भगवान ये नहीं बोले कि मुझे दे दो, मैं दुनिया का कंट्रोलर हूँ, नहीं, भगवान बोले कि राजा के पास ये चीज़ें होना चाहिए। जब इसे बोले शत्रुजीत को भगवान कृष्ण ने, तो फिर शत्रुजीत ने क्या किया, भगवान कृष्ण को अपशब्द बोल के वो निकल गए। फिर उसी समय कहता है भगवान कृष्ण को कुछ बुरा नहीं लगा। फिर शत्रुजीत क्या किए, अपने शत्रुजीत का जो छोटा भाई था उसका नाम था प्रसन्न, वो प्रसन्न क्या करते, वो मणि का लकेट पहन के वो घोड़े के ऊपर बैठ के बाहर गए थे ये करने के लिए, मुर्गया या शिकार करने के लिए। उस समय एक बलशाली तगड़ा शेर ने क्या करते, शत्रुजीत को भी वध कर लेते हैं और घोड़ा को भी। और उस समय उस इलाका में एक भगवान के महान भक्त जो कि जाम्बवान थे, वो क्या करते थे, जाम्बवान क्या कर रहे थे, उस इलाका में रह रहे थे। जाम्बवान क्या करते, वो शेर को वध कर लेते हैं और वो मणि को लेके अपने जो गुफा में रख लेते हैं। मीन्स एक्चुअली प्रॉपर लिखते हैं जाम्बवान भगवान के भक्त थे, इसलिए भक्तों को जो मिट्टी सोने में कुछ फर्क नहीं दिखता है, मणि में कुछ फर्क नहीं दिखता है, इसलिए क्या किए, वो मणि को लिए अपने बच्चे को दे दिए इसे खेलो करके। और उस समय जब भगवान मीन्स जब शत्रुजीत ये सर प्रसन्न का वध हो जाता है और श्यामंतक मणि द्वारिका प्रांत में नहीं रहता है, तभी सारे जो लोग ने कृष्ण को कंप्लेन करते, कृष्ण ने कुछ दिन पहले ये मणि मांगा था और शायद कृष्ण को नहीं दिया, इसलिए कृष्ण ने शायद प्रसन्न का वध कर लिया। तो शत्रुजीत वगैरह सब कृष्ण को ब्लेम कर रहे थे। और उसी समय भगवान कृष्ण, तो अभी देखिए हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं अपकीर्ति के बारे में, कृष्ण भी कैसे अपने अपकीर्ति को नहीं सहन करते हैं, भले कृष्ण गलती नहीं किए फिर भी अपकीर्ति को सहन नहीं करते। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, फिर ढूंढ डांड के आते हैं और दिखते हैं कि प्रसन्न मरा हुआ पड़ा है, उनका घोड़ा भी, फिर बगल में शेर भी। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने सारे द्वारिका निवासियों को बोलते आप इसी गुफा के बाहर रहो, और कृष्ण उसी गुफा में प्रवेश करते हैं। और जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि ये जो एक जो सेविका थी जाम्बवान का, वो क्या कर रहे थे, उनका बच्चा को पकड़ के रखे थे और वो खेल रहे थे। जिसे सेविका देखते इसी गुफा में भगवान कृष्ण की तेजपूर्ण शरीर, तो सेविका घबरा जाते, जोर से चिल्लाते, कुत्ते के व्यक्ति आया है हमें हमला करने के लिए, जान से मारने के लिए। उस समय जाम्बवान क्या करते, उस गुहा से बाहर आते हैं। और कंटिन्यूसली जाम्बवान का और भगवान कृष्ण का 28 डेज तक युद्ध होता है। तो प्रपा लिखते हैं ये जाम्बवान ने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तभी अपना अस्तित्व को भूल जाता है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि त्रिविध नरकश्चोदम द्वारम नाश अनमात्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एत त्रय त्यजेत, इन तीन चीजों को हमें हमेशा छोड़ना चाहिए। या महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज और यक्ष का संवाद, इन दोनों में भी वार्तालाप होता है। बोलते हैं व्यक्ति कौन शांत, कौन सा व्यक्ति शांति रह पाए, शांति में रह पाएगा, तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जो व्यक्ति ने क्रोध को त्यागा है। फिर और एक प्रश्न पूछते हैं यक्ष, वो पूछते हैं कि दुनिया में शोक का कारण क्या है, तो बोलते कि अज्ञान। फिर आगे बोलते हैं कि यश का मुख्य स्थान क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि दान देना, कोई व्यक्ति अगर दान देता है तो एक यशस्वी माना जाता है। फिर आगे बोलते हैं कि इस दुनिया में किस चीज को वश में करने से व्यक्ति सुखी हो पाएगा, उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति मन को वश में क्या है वही वास्तव में सुखी हो पाएगा। भागवत में वही सिद्धांत बोलते हैं, कौन सा, पांचवा स्कंद में यशस्त्री भगवत नहीं हराव अवक्त कुत, हाँ यशस्त्री भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणिस्तत्र समासदेसुरा हराव अवक्त कुतो महत्गुण मनोरथेन धावतिधि बही, मन की रथों पर निवास करके वो भ्रमण कर रहा है इसलिए वो मीन्स शांति नहीं पा पाएगा। तो इधर देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब जांबवा ने क्या किए थे, क्रोध में आ गए थे इसलिए भगवान को नहीं पहचाना। फिर से कंटिन्यूअसली 28 डेज तक युद्ध चला और उस समय कृपा लिखते हैं पहले भगवान कृष्ण और जांबवान वेपन से युद्ध किए, फिर बाद में स्टोन्स पत्थर से, फिर बाद में बिग ट्री बड़े बड़े पेड़ पौधे से उखाड़ के मारने लगे, फिर बाद में फिस्ट मुट्ठी प्रहार से युद्ध किए। और उस समय जांबवान का शरीर पूरा रक्त से लथपथा गया था और उस समय जांबवान को समझ में आता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। तो प्रभुपाद बोल लिखते हैं एक्चुअली भगवान को वीर रस का आदान प्रदान करना था, इसलिए भगवान क्या किया उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते। श्रीवल्ल रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का 46 चैप्टर में लिखते हैं ये जो वीर रस के बारे में, वो वीर रस होता है चार प्रकार के। हाँ, पहला कि दान वीर दान देने में एक्सपर्ट, बाद में दया वीर दया करने में एक्सपर्ट, तीसरा है उदार वीर, उदार मीन्स सॉरी दान वीर हो गया, धन वीर धन जिसके पास धन ज्यादा है, फिर बाद में बोलते कि धर्म वीर। तो दान वीर को दो भाग में डिवाइड करते रूप गोस्वामी, पहला कि उदार, दूसरा है त्यागी। उदार में भी दो प्रकार के, एक है प्रीतिदान, दूसरा है पूजा दान। प्रीतिदान में उदाहरण देते हैं युधिष्ठिर महाराज का, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं भगवान कृष्ण को सुंदर सुंदर वस्त्र देते हैं, हार पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, अच्छा पैलेस में रहने का अरेंजमेंट करते हैं, बाद में अपने आप को खोजते मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया। और एक उदाहरण देते हैं नंद महाराज का, जब भगवान कृष्ण जन्म होते हैं नंद महाराज सारे ब्राह्मणों को दान देते हैं और उस समय सारे ब्राह्मण इतना अप्रिशिएट करते नंद महाराज को, वो बोलते हैं कि हमने सुना था नृग महाराज ने और पृथ्वी महाराज ने बहुत दान किए थे पर आपने उनसे बढ़कर निकले। नंद महाराज को इतना गुणगान करते हैं कौन, सारे ब्राह्मण लोग। तो मैं कहा लिंक छोड़ दिया, ये जो जांबवान क्या के लिंक निकल गया मेरा, ठीक है हाँ खेलना। तो इधर जांबवान क्या करते हैं, मीन्स युद्ध करते हैं, बाद में हाँ जांबवान जब भगवान जो इनको समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ने कोई दूसरे साधारण व्यक्ति ने, स्वयं रामचंद्र थे पिछला जन्म में, तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रभु आप पिछला आप अजन्मा है, अद्वितीय एक में वो अद्वितीय है, आप षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है और ब्रह्मांड की सृष्टि प्रलय और स्थिति में क्रिएशन कंट्रोल डिस्ट्रक्शन तीनों टाइम आप रहते हैं, मेरे से गलती हो गया, आपने जब रामलीला में आए थे तभी इस जो लंका पार होने के लिए आपने सॉरी हाँ लंका को जाने के लिए आपने सेतु बंध बांधा था, फिर रावण जिसे पराक्रमी राक्षसी को आपने धराशायी कर लिए थे, ये तो बहुत बहुत गुणगान करते हैं और बोलते हैं मुझे प्रायश्चित करना है, इसलिए क्या करते हैं अपनी पुत्री को देते हैं जांबवती को। फिर इधर जब गुफा के बाहर सारे द्वारिका के निवासी रह रहे थे और उनको वो 12 दिन तक वेट किए, बाद में उनको समझ में आ गया शायद कुछ तो अपकीर्ति हो गया होगा भगवान कृष्ण का, इसलिए सारे जो द्वारिका के निवासी दुखी हृदय में जाते हैं। और उस समय उधर जब उग्रसेन महाराज, वसुदेव, देवकी, इधर से रुक्मिणी जो थे सत्यवादात में रुक्मिणी, ये सारे जो द्वारिका के निवासी का दुखी होते हैं और दुखी होके उधर की देवी का मंदिर है उसका नाम है चंद्रभाग्य देवी, उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं हमसे ऐसा क्यों संकट आया, आप कृपया बचाइए। तो उसी समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जाम्बवती को लेके द्वारिका नगर में प्रवेश करते हैं और उसे अमंत्र मणि लेके इनको देते हैं, किनको, उग्रसेन महाराज को। अभी देखिए उग्रसेन महाराज भी एक धार्मिक राजा थे, ऐसा लालची नहीं थे। साधारण तौर से आमतौर से अगर आज के राजा होता तो बोलता अच्छा हो गया मेरे पास ही रखता हूँ। पर उग्रसेन महाराज ने क्या किए, सारे राजाओं को मीटिंग बुलाए और बोले कि ये मूर्ख शत्रुजीत खाली खाली हमें ब्लेम कर रहा था। देखिए भक्त लोग कैसे अपकृति से हमेशा बचते। तो उस समय सारे राजाओं को बुलाते हैं और उस समय शत्रुजीत और उनके जो सचिव मिनिस्टर वो सर नीचे करके बैठे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि ये लो आपकी मनी, फेंक देते हैं। तो शत्रुजीत और उनकी सचिव दोनों चले जाते हैं उनके राज्यों को। प्रभा लिखते हैं जाते समय वो हमेशा कंटेम्पलेट कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मेरा कितना दुर्भाग्य कि मैं इतने बड़े बड़े व्यक्ति महत्व को भी इंसल्ट किया, अपशब्द का उच्चारण किया। उस समय वो सोच रहे थे तो भगवान तो अंतर्यामी हर हर किसके हृदय में निवास करते हैं, उनको मालूम है। शत्रुजीत को पश्चाताप होने लगा, तभी वो सोचा कि मुझे इस अपराध से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए शत्रुजीत ये तय करते हैं कि मेरा जो पुत्री है सत्यभामा उनको मैं दे देता हूँ भगवान की सेवा करने के लिए। तो कहा था कि नेक्स्ट डे सॉरी कुछ दिन में सत्यभामा को मुंशी लाके भगवान कृष्ण को देते हैं और साथ साथ श्यामंतक मणि को भी देते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि हमें कुछ श्यामंतक मणि वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी इच्छा है कि जीवात्मा को मेरे शरण में लगाना है तो सत्यभामा को भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं और वो श्यामंतक मणि को खुद के पास नहीं रखते, उनके पास में जो मंदिर है वो मंदिर में रख लेते, क्योंकि श्यामंतक मणि का एक खासियत था वो मणि जिस इलाका में रहेगा उस इलाका में जितने सारे सुख दुख जितने सारे कठिनाई है सर जितने सारी कठिनाई है वो सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके प्रांत वो मंदिर में रखते हैं भगवान कृष्ण। तो हम लोग ये सुनते हैं जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपने अपकृति से बचते हैं सत्य को धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए। कल सीमा दिनेश चंद्र को जबरदस्त क्लास दे रहे थे, ऐसा लग रहा था क्लास कंटिन्यूसली चलते रहे 12 बजे तक, पर भक्तों का भी सेवा होता है। तो इनमें से और एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, अपकृति के में अपकृति से कैसे एक भक्त को बचना चाहिए। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास अंगन में नृत्य कर रहे थे तभी उधर कुछ द्वेषी लोग होते थे, उनको अलाउ मीन्स वो क्या करते थे हमेशा उनकी कीर्ति को नीचे लाने के लिए चाहते थे। तो इस समय एक द्वेषी था व्यक्ति था, उनका नाम था गोपाल चापल। वो क्या कर रहा था, श्रीवास अंगन के सामने सब जो काली माता को चढ़ाने का मांस मदिरा कुछ कोमड़ी कुछ अलग अलग सब चीजें बुरे चीजें लाके डाल देता था और जो जो से सुबह सुबह चिल्लाता था, अरे देखो 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 ये कैसे अपने आप को वैष्णव बोलते हैं और बोलते कि हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं पर रात भर क्या क्या कर रहे देखो और घर के सामने से पता चलता है। तो उस समय उस इलाके जितने सारे बड़े बड़े व्यक्ति मान लो साहूकार होते थे बड़े बड़े विद्वान होते थे वो सब आते थे और कान में हाथ देख बोलते विष्णु विष्णु ये गौरांग महाप्रभु और ये श्रीवास गलती से भी ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या करते थे खुद भी वो स्पर्श नहीं करते थे, झाड़ूदारों को बुला के वो साफ सफाई करते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ ये गोपाल चापल को लेप्रसी हुआ और लेप्रसी होने के पश्चात एक रिवाज है आज भी अगर आप ओडिशा प्रांत में जाएंगे तो कोई व्यक्ति को कोई गाँव में लेप्रसी है ना उसको गाँव में नहीं रखते, वो गाँव के बाहर ही व्यक्ति रहता है। हमारे गाँव में तो एटलीस्ट हमें बहुत ऑब्जर्व किया है, मालूम नहीं मैं 2004 से गाँव से बाहर हूँ अभी का सिचुएशन। तो जब हाँ गोपाल जी आपने जब इस प्रकार गलत किया उसको लेप्रसी हो गया, फिर बाद में वो गांव के बाहर रहता था, लोग उसको धिक्कारते थे बोलते कि आपने भगवान के भक्तों के अपराध किया। फिर उस समय जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया बांग्लादेश गए थे, महाप्रभु तो सन्यास लेके जगन्नाथपुरी आ गए, फिर बाद में सॉरी बोलना भूल गया मैं, महाप्रभु सन्यास लेंगे पहले बांग्लादेश जाते हैं उधर टीचर को पढ़ाते सॉरी शिष्यों को पढ़ाते, महाप्रभु महाराज का लेक्चर है महाराज बता रहे थे उस लेक्चर में, वो बांग्लादेश का सारे स्टूडेंट वो वेट करते थे कब निमाई पंडित आएगा और हमें शास्त्र का ज्ञान देगा। वो लोग ने अपने जिंदगी भर का कमाई रखे थे उधर से आके नवोदय में पढ़े, फिर भी उनके उतना बैलेंस नहीं होता था, उतना पैसा नहीं होता था कि आके इधर पढ़ाई करे, इसलिए मुझसे वो बहुत दुखी रहते थे। पर जब निमाई पंडित जाके बांग्लादेश में पढ़ाया बच्चों उधर का स्टूडेंट को सारे लोगों ने खुशी हो गए और उनकी ट्यूशन में सीट का काम पड़ने लगा, महाराज इतना डिटेल से बता रहे थे लेक्चर में। बाद में जब निमाई पंडित उधर से आते हैं तो कहता है कि वो जो सुभाष ठाकुर देखते रहते हैं सॉरी गोपाल चापल और प्रार्थना करते हैं मेरे से अपराध हो गया माफ कीजिए। उस समय गोपाल चापल को महाप्रभु बोलते हैं कि आपने एक वैष्णव की अपराध किया है, मैं आपको माफ नहीं करेगा, आपको अगर इस अपराध से छूटना है ना तो आप क्या करो, जाके श्रीवास ठाकुर का ही आश्रय लो। तो कहा था कि श्रीवास ठाकुर के चल में जाके वो लोटांगन डालते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उस समय श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, उनको गले मिलते हैं और उनके सारे जो लेप्रेसी होता दूर हो जाता है। इनमें से हम लोग एक सिद्धांत सीखते हैं, जो भक्त काल अपकृति करना चाहता है उसको कभी सदगत नहीं होता है, वो केवल भक्तों का आश्रय लेने के पश्चात ही उसका थोड़े बहुत कुछ प्रगति हो पाएगा। और चार पाँच मिनट में और एक स्टोरी सुनाता हूँ। प्रभात और के मुद्दा बोलते हैं, एक भक्त को कठिनाई उठाना चाहिए अगर आपने आपको भक्ति में टिका के रखना है तो उसके लिए आप लोग सुने होंगे जगन्नाथपुरी में एक रिवाज होता है, उसको ओडोन षष्ठी बोलते हैं, ओडोन षष्ठी, जो कि वही दिसंबर जनवरी में आ जाता है फेस्टिवल। तो उसका स्टोरी इस प्रकार से, प्रसंग आता है भगवान चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, सारे वैष्णव जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते थे, भगवान की सुंदर आरती होता था, बाद में सबके सामने भगवान के सुंदर भगवान को सुंदर अलंकार और वस्त्र आभूषण से सजाते थे, फिर बाद में महाप्रभु दर्शन लेके फिर चले जाते थे। तो एक बार गदाधर पंडित महाप्रभु को रिक्वेस्ट कर रहे, मुझे एक मंत्र दीजिए जो कि मंत्र जप करके मैं भगवत प्राप्ति करूँ। महाप्रभु बोलते, नहीं, आप ही गुरु अभी तक जीवित है, आप ही गुरु ही आपको दिखा देगा। तो गदाधर पंडित बहुत दुखी हो जाते हैं। जब बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि अभी 10 दिन में आपके गुरु आने वाले हैं, तब तक आप वेट करो। फिर 10 दिन के बाद पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। आज ही बांग्लादेश जाएंगे तो पुंडरीक विद्यानिधि का घर है, मार्जिक क्लास से सुना था मैं गया नहीं था। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब 10 दिन के बाद आते हैं, तो आने के बाद वो कहाँ जाते हैं, पहले सूरभ दामोदर गोस्वामी का जो भजन कुटीर, और सारे वैष्णव के सामने पुंडरीक विद्यानिधि का चरण धूल सूरभ दामोदर गोस्वामी लेते हैं, और सूरभ दामोदर गोस्वामी पुंडरीक विद्यानिधि सूरभ दामोदर गोस्वामी का चरण धूल लेते हैं। दोनों इस प्रकार की प्रेमेर और कलह लिखते हैं, तो प्रेम से ऐसे झगड़ा कर रहे थे और सारे वैष्णव उसका आनंद ले रहे थे, खुशी हो रहे थे, सब हंस रहे थे जोर जोर से। उस समय उसका दूसरे दिन पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित सूरभ दामोदर गोस्वामी गोविंद महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। फिर उस समय जब देखते हैं कि जगन्नाथ जी को सुंदर वस्त्र आभूषण सब किया है, ऊपर से एक टॉवल जैसा डाले है, ओढ़ोनी, ओढ़ोनी मीन्स ओडिया लैंग्वेज में जो ऊपर से डालते हैं उत्तरी जैसा, तो बोलते कि वो तो डाले है पर वो साफ सफाई नहीं, क्योंकि ये रिवाज होता है श्रुति रूप गोस्वामी बोलते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पत है। तो पुंडरीक विद्यानिधि सोचते कि भगवान जगन्नाथ जी को ऐसा कैसा वस्त्र डाला है जिसका वो जो स्टिकर होता है वो भी नहीं निकाला है, साफ सफाई भी नहीं किया, ऐसे डाल दिया है। तो इसमें सूरभ दामोदर गोस्वामी को पूछते ऐसे कैसे जगन्नाथ जी को ये लोगों ने वस्त्र चढ़ा दिया। तो इसमें सूरभ दामोदर गोस्वामी बोलते कि जगन्नाथ जी के पास कुछ नियम नहीं चलता है, उनका जो पुजारी कुछ उच्च दर्जे का होते हैं, हम कुछ बोलने जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमें। तो कहता है वो जो पुंडरीक विद्यानिधि के साथ सूरभ दामोदर गोस्वामी के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बाद में बोलते कि फिर भी ये लोग क्यों नियम नहीं मानते हैं, अपराध हो जाएगा ना भगवान की सेवा में। तो ऐसे लोग बहुत मीन्स ऐसे झगड़ा कर एक आर्गुमेंट करते रहते हैं, पर सूरभ दामोदर गोस्वामी बोले कि ये जगन्नाथपुरी कुछ अलग ही लीला स्थान है, उधर भगवान का ही चलता है, हम लोग कुछ करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में कहा था कि शाम को पुंडरीक विद्यानिधि जिस घर पर रहते हैं उधर चले जाते हैं, सूरभ दामोदर गोस्वामी एक जगह में रहते हैं, और रात में जगन्नाथ जी सपने में आते हैं, जगन्नाथ बलदेव, और कंटिन्यूसली एक लेक्चर में सुन रहा था तो कहा था कि कंटिन्यूसली भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी मिलके 48 मिनट तक थप्पड़ मारते रहते हैं पुंडरीक विद्यानिधि को। 48 मिनट तक मार खाना कितना एक जोक नहीं। तो पुंडरीक विद्यानिधि इतना मार खाते खाते फिर सुबह सुबह सूरभ दामोदर गोस्वामी के पास आते हैं, और सूरभ दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि कुछ आप इंजरी हुआ है आपके चेहरा से दिख रहा है। उस समय सूरभ दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं कि स्वयं जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए थे, मुझे पिटाई किए। उस समय सूरभ दामोदर गोस्वामी देखिए कैसा प्रेमी भक्त थे, वो नाचने लगते, बोलते कि बाप रे, भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र प्रद्युम्न को कोई पिटाई नहीं किया, और आप प्रद्युम्न से बढ़कर हो, जगन्नाथ जी ने वही कृष्ण आपको पिटाई किया। तो कहा था कि मुझसे जगन्नाथ जी ये बोलना चाहते कि ये धाम में कुछ नियम व्यम नहीं चलता है, उधर मैं और मेरा भक्त में रेसिप्रोकेशन होता है। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि का उच्च स्तर था, और वो कहा था कि पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में वो इतना उच्च कोटि का वैष्णव थे, कभी भी वो गंगा नदी को अपने पैर से स्पर्श नहीं किए, हमेशा गंगा जल लेकर प्राशन करते थे। वो बोले कि ये स्वयं भगवान की चरणामृत है, और मैं इतना काबिल नहीं हूं कि चरणामृत को पैर स्पर्श कर पाओ, इतना उच्च कोटि का वैष्णव होते हैं। तो ये सारे भागवत सिद्धांत का यही एसेंस है कि भक्ति तत्व तो बहुत गुह्य है, गुरु परंपरा से हमें जो मिला है उसको सिंसियरली अडॉप्ट करना चाहिए। कल एक लेक्चर पढ़ा था कृष्ण कथामृत बिंदु का, उसमें भक्तिशांत ठाकुर बोलते हैं जैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जानवर को मेडिसिन का झोली देते हैं और वो झोली जानवर के मुख में हमेशा बंधा हुआ रहता है। वैसे एक साधक की कान में हमेशा हरि कथा की झोली बंधा होना चाहिए और मुख में हरि नाम का, हरि कथा का, महाप्रसाद का। मुख महाप्रसाद के लिए एक्चुअली इजी है पर बाकी चीजें के लिए डिफिकल्ट है। फिर भी है ना, भक्तिशाल ठाकुर का ये इच्छा है कि हमेशा हरि कथा सुनेंगे तो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। कृष्ण गीता में वही बोलते हैं, निर्वाण मोह जित संग दोष हो अध्यात्म नित्य अभिनिवृत्त कामेर द्वंदेर विमुक्ते सुख दुखे संगे गच्छन्ति अमूढ़ पदम अवयम तत्। वो व्यक्ति जो आध्यात्म नित्य है वही व्यक्ति गच्छन्ति अमूढ़ पदम अवयम तत्, वो अमूढ़ पद अव्यय पद को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हमें हमारे जो एटमोस्फेयर प्रभुपाद ने ऐसा डिजाइन किया है बस उस पर लगे रहना है। और महाराज बोलते हैं कि ग्रेटफुल हार्ट इज द हैप्पी हार्ट, और हृदय आनंदी है जो हमेशा कृतज्ञ है, मेरा क्या लायक है मैं इतना दिव्य आनंद के भागीदारी बन पा रहा हूँ, फिर भी गुरु कृष्ण ने मुझे क्या क्या कृपा करके मौका दिए है। या जिसके रूप को संपात का उत्साह निश्चय धैर्यात, तो हरधर मार्ग के लेक्चर में बता रहे थे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है उत्साही होते हैं और दूसरे होते हैं कपटी। इसलिए उड़िया लैंग्वेज में कहावत है कपटी और कपट स्वभाव जहार ताको दुरुमु करे जुहार, मीन्स मिथ्याचारी और कपटी होते हैं। मीन्स बोलता है कि जो उच्चाय का अपोजिट निरुच्चाय, ऐसा निरुच्चाय लोग अगर हमारे जीवन में है ना उनको दूर से दंडवत करने का, तुम इतने बड़े हम इतने बड़े, समझ में ना। तो निरुच्चाय लोग जीवन में आएंगे तो खुद भक्ति में कोलाप्स है और हमें भी कोलाप्स करके छोड़ेंगे। इसलिए परम पूजन अभिवेंद्र महाराज इधर के लेक्चर दे रहे थे, मैं प्रश्न पूछा था महाराज हमें उच्चाय कैसे रहना है। महाराज ने बोले कि जो उच्चाय भक्त है उसकी जिसकी एक व्यक्ति का सावली उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे उच्चाय भक्त का पीछा नहीं छोड़ने का, नहीं तो फिर आप भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे उच्चाय भक्त हमारे सामने है, सारे वैष्णव में किसका नाम ऐसा पर्टिकुलर नहीं ले रहा हूँ, हमें उनके पीछे रहना है और अपना जीवन सफल करना है। जय ग्रंथराज भगवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।